सभी कुछ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतां सावधूतां परिजन सहितां कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज चर्चा करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में। तो आप सब परिचित हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयशति तदं भक्ति उपरतं अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान भगवद गीता हम सबको प्रदान करते हैं और भगवद गीता के द्वारा हमें बहुत सरल सूत्र वो बताते हैं। क्या सूत्र है? भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से बहुत सरलता से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। बल्कि हम भगवान के अलावा सारे जगत को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, सारे जगत को हम तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, चाहे हमारे संबंधी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, देशवासी हैं, अनुयायी हैं, सबको हम संतुष्ट करना चाहते हैं। और उनके अलावा जो हमारे शरीर में नौ जो इंद्रियां हैं, नौ होल्स हैं, उनको हम संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई 9 होल्स। ये बहुत इम्पॉसिबल है अपने शरीर के 9 होल्स को संतुष्ट करना। लेकिन आप यदि कंप्लीट होल को सेटिस्फाई करते हो तो आप इन 9 होल्स को क्या करोगे, इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो। और वो कंप्लीट होल कौन है? कृष्ण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कि हमारा केवल यही प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने कार्यकलापों के द्वारा मन वाणी और शरीर के द्वारा कृष्ण को तुष्ट किया जाए। क्योंकि हमने करोड़ों करोड़ों जन्म अपने बिताए और तब तक हम उस जन्मों में भी सबको हम तुष्ट करते करने में लगे हैं, संतुष्ट करने में लगे थे। लेकिन फिर भी अभी तक हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, ना खुद हम संतुष्ट हुए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। यदि आप केवल कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हो तो स्वाभाविक रूप से आप क्या करते हो, सारे जगत को तुष्ट कर सकते हो। जैसे महात्मा गांधी ने, श्रील प्रभुपाद ने कहा, महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया अपने देशवासियों को तुष्ट करने का, संतुष्ट करने का, लेकिन फिर भी सारे लोग संतुष्ट नहीं हुए। उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो फिर भी असंतुष्ट थे उनके कार्यों से। तो महात्मा गांधी की वो लोग हत्या करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से उद्धृत करते हुए हमें कहते हैं कि संसिद्धि हरितोषणम, चाहे व्यक्ति कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, उसको किसकी तुष्टि में लगना चाहिए? कृष्ण की तुष्टि में। उसको ऐसे कार्यकलापों में अपने आप को मग्न करना चाहिए कि जिसके द्वारा परम भगवान तुष्ट हो जाए। और क्योंकि कृष्ण को आप तुष्ट करते हो तो वही आपके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, या परफेक्शन ऑफ लाइफ जो प्रभुपाद कहते कि वही हमारी असली तुष्टि है। हाँ, जिस प्रकार से हम महाभारत में सुनते हैं पांडवाज, पांडवों का जो जीवन है केवल कृष्ण के लिए था। तो पांडव जब वनवास में थे तो उस समय भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, और उस अक्षय पात्र के द्वारा, सूर्य के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था अक्षय पात्र। तो भगवान ने जब उनको दिया तो द्रौपदी जब उस अक्षय पात्र से भोजन ग्रहण कर लेती थी अंतिम समय में, तो उसके बाद किसी के लिए वो अक्षय पात्र और जो फूड है वो निकाल नहीं सकते उसमें से, या क्रिएट नहीं कर पाता था। तो फिर एक बार जो दुर्वासा मुनि है वो पांडवों के या कौरवों के यहाँ आए दुर्योधन के घर, और दुर्योधन ने उनकी बहुत अधिक सम्मान आदर और स्वागत आदि किया, उनकी पूजा अर्चना की, उनको संतुष्ट किया। दुर्वासा मुनि बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, हमारे जो भाई हैं पांडवाज है उनके ऊपर भी आप कृपा कीजिए जाकर। उनको पता था कि पांडवों के पास जाएंगे और अकेले वो भेज नहीं रहे थे दुर्वासा को, दुर्वासा मुनि के जो 10,000 या 60,000 शिष्यों के साथ, पूरे टीम के साथ भेज रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्वासा मुनि थोड़ी भी कोई गलती करे और उससे वो क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति का पूर्ण रूपेण समूल नष्ट कर सकते उस व्यक्ति को। तो दुर्योधन ने जब ये सोचा तो दुर्योधन उनको भेजता है, पांडव जब वनवास में थे तो ये सारे पहुंच जाते वहां। तो पांडवाज बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि वो किसकी चिंता कर रहे थे? कृष्ण की चिंता में थे एक प्रकार से। तो जब ये दुर्वासा मुनि आदि सारी सेना वहां पहुंची तो उस समय पांडवों ने प्रसाद ग्रहण किया था, द्रौपदी ने भी खा लिया था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा कोई उपाय नहीं था कि किस प्रकार से हम इन जो दुर्वासा मुनि हैं और इनको कैसे हम संतुष्ट करेंगे। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, और भगवान कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही भगवान कहते अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। तो जो भक्त मेरे अनन्य भाव से भगवत भजन करते हैं, अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उनके पास जो भी चीजें हैं उनको उनकी रक्षा करता हूँ। तो जब द्रौपदी ने इस विपदा में कृष्ण का स्मरण किया तो कृष्ण जो द्वारका निवासी हैं, कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण कहते कि हे द्रौपदी, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, क्या ऐसी विपदा है? तो द्रौपदी कहते हैं कि हमारे घर में दुर्वासा मुनि अपने पूरी सेना के साथ आए हैं और हमारे पास उनको फीड करने के लिए, उनको भोजन प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते नहीं नहीं, आप चेक करो, जो मैंने वो पात्र दिया था अक्षय पात्र है, उसमें कुछ ना कुछ होगा, आप लाओ मेरे लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने उसको धोके रखा है, उसमें कुछ नहीं है। फिर भी कृष्ण लाते हैं और कृष्ण कहते कि उससे उस पात्र, कृष्ण ढूंढ रहे थे उस पात्र में कुछ है, तो एक ग्रेन का छोटा सा दाना था जिसको भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान ने स्वीकार करने से पहले वो भीम को भेजते हैं कि हे भीम, तुम क्या करो, अपनी गदा लेकर नदी पर जाओ। ये सारे दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्य नदी पर स्नान करने के लिए गए थे और उनको कहा कि आप गदा हाथ में ले लो और जाओ, उनको इनवाइट करो प्रसाद के लिए। तभी दुर्वासा मुनि गए, ये भीम गए नदी के किनारे सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन एक आश्चर्य उन सारे मुनि और उनके फॉलोअर्स में हो रहा था कि जल में वो स्नान कर रहे थे लेकिन उनको डकार आ रहे थे। उन्होंने सोचा स्नान करने से पहले तो इतनी तीव्र भूख लगी थी और अचानक ये पानी का क्या प्रभाव है, स्नान करने मात्र से हमारा पेट फुल हो गया है, डकार आ रहे हैं और फूड के लिए कोई भी भोजन नहीं, कोई भी स्थान नहीं है। और उसी समय वो किसकी आवाज सुनते हैं, भीम की आवाज सुनते हैं और भीम गदा लेकर थे। भीम ने कहा प्रसाद रेडी है, तो सब लोग सोच रहे थे कि हमें क्या करें, यदि प्रसाद नहीं खाएंगे तो भीम की गदा को खाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए सारे जो मुनि हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, महाभारत वर्णन करता है कि वहां से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, यदि केवल व्यक्ति कृष्ण को अपने कार्यकलापों के द्वारा तुष्ट करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सारे जगत को तुष्ट कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण वास्तव में एक पेड़ है या जड़ है। कृष्ण या वृक्ष की जड़ में आप पानी देते हो तो स्वाभाविक रूप से सारा जो वृक्ष है वो हरा भरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे कार्यकलापों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण होने चाहिए, लेकिन हम कृष्ण के अलावा बाकी सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जनरली जो आलसी लोग हैं वो जीरो के पीछे भाग रहे हैं। जनरली जीरो का मतलब है लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहता है, अपना नेम है, फेम है, ग्लोरीज है, धन है, बल है, सौंदर्य है, मान सम्मान आदि है, इन सब के पीछे व्यक्ति भाग रहा है। इसकी तुलना शास्त्र जीरो से करते हैं, शून्य से करते हैं, लेकिन जो एक है, एक कौन है, कृष्ण है, उनके पीछे नहीं भाग रहे। या तो वो दो के पीछे भाग रहे हैं या तो फिर जीरो के पीछे भाग रहे। दो का मतलब दो नंबर का जो पैसा है उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और एक इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि जो एक कृष्ण है उनके पीछे व्यक्ति भाग नहीं रहा है, कृष्ण को छोड़कर बाकी सब चीजों की सेवा करना चाहता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में उद्धव जो भगवान से संवाद करते हैं तो उद्धव करते कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में दुखों का केवल एक में कारण है और वो कारण क्या है, हे कृष्ण आपकी सेवा को छोड़कर मैंने सबकी सेवा कर ली है और यही एक मेरे दुखों का जड़ है। तो इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए कि हम तो सारे जगत को संतुष्ट करना चाहते हैं या सबकी सेवा में अपने आप को लगाते हैं, लेकिन किसको छोड़ देते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझे प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मैं क्या चाहता हूं। प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है, कृष्ण को खरीद सकता है। क्या अर्पण करने से, केवल एक पत्र अर्पण करने से। जैसे अद्वैत आचार्य ने जब सोचा कि कलयुग इतना अधिक बढ़ रहा है और ये सारे जो लोग कृष्ण से, कृष्ण भक्ति से विमुख हो गए हैं, ये लोग तभी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं जब स्वयं कृष्ण अवतरित हो जाए और इनको भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करे। तो उन्होंने क्या किया अद्वैत आचार्य ने, अद्वैत आचार्य गौतमीय तंत्र का एक श्लोक उनको याद आया। वो श्लोक क्या था, तुलसी दल मात्रे न जलश चुलके न वहा, कि केवल कोई व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता कृष्ण को अर्पित करता है और जल के साथ, हाँ तो भगवान क्या करते हैं, विक्रीडिनीते सो आत्मानं भक्तव्य भक्तवत्सलः, वो कृष्ण उस एक पत्ता अर्पित करने मात्र से अपने आप को बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं, उस डिवोटी को, उस डिवोटी के कृष्ण हो जाते हैं। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल है और कृष्ण वास्तव में हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। कृष्ण एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं हमसे, वो है कि हम अपना जो मन है कृष्ण में लगाएं। इसलिए पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण बोलते हैं, लेकिन भगवद गीता में हमसे कोई चीज मांगते नहीं है। अर्जुन को कृष्ण बारंबार यही कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, एक ही श्लोक भगवद गीता में दो बार आया है, मन मना भव मत भक्तो, कि आपका मन मुझे अर्पित करो, आप मेरे भक्त बन जाओ। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, कि हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, इस जगत में सबसे बड़ा यशवान व्यक्ति कौन है? हर एक व्यक्ति बहुत यश फेम चाहता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को यह प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा यशस्वी फेमस व्यक्ति कौन है, तो रामानंद राय ने कहा कि कृष्ण का भक्त बन जाना, इससे बढ़कर यश की प्राप्ति संसार में नहीं है। तो वास्तव में हम कोई पद या डेजिग्नेशन पोजीशन चाहते हैं तो एक ही पोजीशन के लिए हमें लालयित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का जब अंतिम समय के कुछ दिन थे तो प्रभुपाद जब आखिरी समय में उन्होंने विदेश की यात्रा की 76 के समय में आखिरी यात्रा थी, तमाल कृष्ण महाराज आदि के साथ श्रील प्रभुपाद लंदन गए। जब वो लंदन पहुंचे, लंदन मंदिर में राधा लंदनेश्वर के सामने, तो कई सारे इंडियन जो युवक है वो श्रील प्रभुपाद से मिलने आए, और हर एक जो युवक है वो अपना अपने बारे में बोलते जा रहा था श्रील प्रभुपाद को, कि मैंने इतनी शिक्षा अर्जन की है, ये डिग्री मैंने प्राप्त की है, वो डिग्री मैंने हासिल की है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये सारी डिग्रियां तो उचित है, लेकिन हम एक ही डिग्री के लिए लालयित हैं, और वो कौन सा डिग्री है? शुद्ध भक्त। एक ही पोजीशन के हम चाहते हैं कि कृष्ण का कैसे अनन्य भक्त बना जाए। इसलिए कृष्ण हमारी बड़ी बड़ी सेवाओं के अलावा क्या देखते हैं? कृष्ण ये देखते हैं कि हमारा उस सेवा में क्या भावना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस, कि हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उस सेवा में कृष्ण उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, बल्कि कृष्ण उस सेवा में जो भावना है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अश्नामि प्रयत आत्मना। प्रयत आत्मना का मतलब है कि जो भावना हम भगवत सेवा में अर्पित करते हैं कृष्ण उस भावना को स्वीकार करते हैं। तो इसी कारण से जो जगन्नाथ जी हैं ये बहुत अधिक भक्तवत्सल भगवान हैं। जगन्नाथ जी की कई सारी लीलाएं हैं, तो कुछ उनके विशेष लीलाओं को हम चर्चा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ, क्योंकि हर एक युग के अलग अलग विग्रह हैं, हर एक युग के लिए अलग अलग धाम हैं, और हर एक युग के लिए अलग अलग महामंत्र हैं, भगवान का पवित्र नाम है। तो उसी प्रकार से जैसे सत्ययुग के विग्रह है रंगनाथ, तो कलियुगा के जो विग्रह हैं वो जगन्नाथ जी हैं। कलियुगा के जो डीटीज हैं वो जगन्नाथ देव हैं, और कलियुगा का धाम कौन सा है? श्री धाम मायापुर, मायापुर। और भगवान का पवित्र नाम कौन सा है कलियुगा में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जगन्नाथ के संपर्क में आना ये बहुत बड़ा भाग्य है कलियुगा में। हम श्रील प्रभुपाद कहा करते थे जब वो जगन्नाथपुरी गए थे अपने शिष्यों को लेकर, तो वहाँ जगन्नाथ के मंदिर में प्रभुपाद के शिष्यों को अलाउ नहीं किया अमेरिकन साधी को अंदर में एंट्री करना। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये केवल पुरी के नाथ नहीं है या पंडा नाथ नहीं है, ये कौन है? या उड़िया नाथ नहीं है, ये कौन है? जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, और आप उनको सीमित क्यों कर रहे हो? आपको कोई अधिकार नहीं है जगन्नाथ जी को सीमित करने का। तो जगन्नाथ जी केवल प्रकट हुए हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और वो दो प्रकार से बद्ध जीवों पर अपनी कृपा करते हैं। एक है उनका दर्शन प्रदान करके, और दूसरा क्या है? उनके प्रसाद के द्वारा। हम श्रील प्रभुपाद ने जब अमेरिका में नया नया ये मूवमेंट शुरू किया था तो उनके एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, और उनकी पत्नी थी मालती, ये बिल्कुल यंग थे दोनों, युवक थे। तो उस समय जब प्रभुपाद के साथ ये दोनों सैन फ्रांसिस्को में रहते थे और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि अभी मिलिट्री में सबको भर्ती करना है वहाँ के युवकों को, क्योंकि वहाँ युद्ध शुरू होने वाला था। तो प्रभुपाद के पास ये गए और इनको मेडिकल जो होता है एडमिशन से पहले, मिलिट्री में एडमिशन लेने से पहले, तो डॉक्टर्स ने उनको बुलाया था मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे प्रभुपाद का जो संघ है वो छोड़कर। लेकिन एक बार उनको जाना पड़ा तो श्रील प्रभुपाद के पास गए और श्रील प्रभुपाद को कहा कि आप क्या कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका संघ छोड़कर नहीं जाना चाहता। और इनकी एक खासियत क्या थी कि ये हर समय उस समय वो सारे जो युवक थे वो जगन्नाथ के बड़े बड़े चित्र बनाते थे और अपने गले में टांग के रखते थे। उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ये पर्सनालिटी कौन है, लेकिन ये भगवान है, प्रभुपाद ने बताया था। और उनके बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतना बड़ा फेस है, उसको टांग के गले में डाल के जाते थे, गले से उतारते नहीं थे और निरंतर हरे कृष्ण मंत्र रटते रहते थे। और इतने लंबे लंबे बाल, हिप्पीज थे। तो जब ये गए मेडिकल के लिए पूरी रात ट्रैवल करके दूसरे दिन, तो जब ऑफिसर्स ने उनको देखा, जब इनका नंबर आया, इनका इंटरव्यू हो रहा था और उसके बाद इनको मेडिकल के लिए अंदर भेजा गया डॉक्टर्स के पास, तो ये निरंतर केवल कृष्ण नाम लेते थे। और इन्होंने कहा, उनको बोला गया कि आप क्या करो, इसको उतार दो। जगन्नाथ का जो लॉकेट था इतना लंबा, उनको कहा कि इसको उतारो और आप यहाँ लेट जाओ। ये मना करने लगे और निरंतर कृष्ण नाम लेने लगे। तो वो डॉक्टर्स ने एक सर्टिफिकेट दिया कि ये व्यक्ति क्या है, पागल है, इनको वापस भेजो, ये क्वालिफाइड नहीं है मिलिट्री में जाने के लिए। तो ये वापस आ जाते, प्रभुपाद इंतजार कर रहे थे और सारे भक्त सोच रहे थे कि ये श्याम सुंदर कैसे वापस आ जाए। तो ये रात को पहुंचे तो प्रभुपाद बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ देव हैं वो वास्तव में अपने दर्शन के द्वारा सबके ऊपर कृपा करते हैं। और दूसरा क्या है कि उनका जो प्रसाद है, जब राजा इंद्रद्युम्न के लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे तो इंद्रद्युम्न को भगवान कहते कि आप मांगो, कुछ वर मांगो। उन्होंने कहा मुझे आप तीन वर दे दो। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा क्या तीन वर दे दो, पहला तो वर है कृष्ण आप मुझे ये दे दो कि मुझे कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, कोई राजकुमार ना हो मेरे बाद। क्यों? क्योंकि आपका इतना बड़ा ऐश्वर्य है, आपकी सेवा में इतना धन और सारा साज सामान इस्तेमाल होता है, मेरा कोई पुत्र होगा तो वो इस पर अपना अधिकार जताएगा और वो क्या कहेगा कि ये मेरे इंद्रिय भोग के लिए है, तो फिर उसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए हे कृष्ण आप मुझे भी क्या मत दो, कभी भी पुत्र मत दो। राजा इंद्रद्युम्न ने पहले ही भगवान से डिमांड की थी। और दूसरी चीज वो भगवान से मांगा उन्होंने, राजा इंद्रद्युम्न ने, कि आपका जो मंदिर है वो बहुत ही कम समय के लिए बंद रहे, अधिक से अधिक समय में आप क्या करो, अधिक से अधिक समय आप मुझे दर्शन प्रदान करो। और फिर हम देखते हैं कि जगन्नाथ का कोई उठने का समय नहीं है वहां और ना कोई सोने का समय है। भगवान जगन्नाथ वहां कभी भी उनकी इच्छा है तब वो उठ जाते हैं और शयन आरती तो बहुत रेयरली आपको दर्शन करने को मिलेगा, या तो 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं। तो इस प्रकार से निरंतर सबको दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा से हमेशा तैयार होते हैं जगन्नाथपुरी में। और तीसरा वर उन्होंने मांगा कि हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आपकी जो उंगलियां हैं वो कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या रहनी चाहिए आपकी उंगलियां, गीली, मतलब आपको निरंतर भोजन को स्वीकार करना होगा। तो राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा के कारण जगन्नाथ जी केवल नाना प्रकार के भोगों को स्वीकार करते हैं, दिन में 8 बार 56 प्रकार के भोग को खाते हैं। और विशेष रूप से आप जब दोपहर को पहुंचते हो 1 या 2 बजे के बीच में, तो एक विशेष भोग उनको ऑफर होता है, उपलब्ध हो, जिसमें हजारों हजारों मटके रखे जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ कहाँ है, अंदर है, बिल्कुल वहां, और उनको भोग लगता है यहाँ भोग मंडप, उसमें इतना बड़ा डिस्टेंस है, हम तो भगवान को कर्टन बंद करके उनके सामने रख देते हैं, लेकिन वहां लगभग कितने मीटर का दूरी है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वहां उस नाना प्रकार के भोगों को स्वीकार करते हैं। और ऐसे जगन्नाथ प्रसाद में इतना सामर्थ्य है कि कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ प्रसाद को ग्रहण करता है तो तुरंत ही भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने जो आसक्ति है वो जागृत करता है। इसलिए जगन्नाथ जी की किसी को कृपा अनुकूल करनी है, प्राप्त करनी है, तो शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति को जगन्नाथ के प्रसाद को प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम, जैसे प्राप्त हो जाए तुरंत स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है इवन पुराणों में वर्णन आता है कि यदि कुत्ता भी जगन्नाथ के प्रसाद को खाए और उनके मुख से गिर जाए तो व्यक्ति को तुरंत उठा के खाना चाहिए, इतना प्यूरिफाइंग है। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं वो अवतरित हुए हैं वास्तव में पार्वती की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े देवतागण भी भगवत प्रसाद के लिए लालायित होते हैं। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो नारद है एक बार भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ जाकर वो कहते हैं लक्ष्मी के पास आप मुझे नारायण की सेवा में लगाओ। तो ये कई महीने कई साल नारायण की सेवा करते वैकुंठ में और भगवान इतने प्रसन्न हो जाते, लक्ष्मी भी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और लक्ष्मी कहते कि बताओ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो नारद उनके कानों में कहते मुझे ना थोड़ा सा नारायण का महाप्रसाद चाहिए। अभी लक्ष्मी बहुत टेंशन में आ गई, लक्ष्मी को भगवान का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था मेरा उच्चिष्ट किसी को भी नहीं देना है। तो अभी इतना सेवा नारद ने किया है तो फिर लक्ष्मी क्या करती है, एक दिन भगवान को प्रसाद सर्व कर रही थी भोगा, तो उस समय भगवान को कहती है कि आपके जो भक्त है नारद वो प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, आपका महाप्रसाद। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ये मुझे पूछना क्यों है, आपने ये सब चीजें पूछनी नहीं चाहिए, ये क्या करना चाहिए डायरेक्टली दे देना चाहिए, लेकिन ठीक है आपने पूछा है तो आप नारद को दे सकते हो। तो नारद प्रसाद महाप्रसाद का पूरा प्लेट उनको दिया जाता है उस दिन राजभोग का। नारद पूरा खाते रहते हैं और खाते हुए, क्योंकि प्रसाद आनंदामुदि वर्धनम, हमें बाकी चीजों में कम आनंद आता है लेकिन एक चीज में अटेंटिव हो जाते हैं और वो क्या है प्रसादम। हाँ जैसे भगवान कहते कि जैसे ये श्लोक शुरू हो जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन एक श्लोक शुरू हो जाता है तो हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं महाप्रसादे गोविंदे। तो फिर जब नारद ने वो प्रसाद को ग्रहण किया और नारद घूमने लगे, अलग अलग स्थानों में गए, तो नारद अपने भाई शिवजी से मिलने के लिए गए तो शिवजी ने कहा कि अरे नारद आज आप इतना खुश क्यों हो, इतना अधिक आनंदित क्यों महसूस हो रहे हो, नाच रहे हो गा रहे हो। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, क्या हो रहा है आपके साथ। तो शिवजी ने पूछा तो नारद कहते कि मेरा मैंने क्या प्राप्त करके आया हूँ, अभी अभी मैं आया हूँ जर्नी से, प्रसाद महाप्रसाद मिला है मुझे किसका नारायण का। तो उन्होंने कहा आप कैसे भाई हो, आपको क्या करना चाहिए बांटना चाहिए, हाँ भाई है मतलब आप वो कृपा मुझे भी देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो मेरे नाखूनों में शायद है कुछ है, तो नारद ने अपने नाखूनों से कुछ प्रसाद कर निकाले और शिवजी के हाथों में रख दिया और शिवजी ने जैसे ही खाया उस महाप्रसाद को शिवजी तांडव नृत्य करना शुरू कर दिए जो प्रलय के समय करते हैं, इतना अधिक नृत्य करने लगे नाचने लगे गाने लगे कि हर कोई देवतागण पृथ्वी भी टलमल होने लगी। और फिर पृथ्वी पार्वती के पास जाकर याचना करती है कि पति पत्नी ही अपने पति को कंट्रोल कर सकती है, आप क्या कीजिए शिवजी को थोड़ा मनाइए और उनको बताइए कि अब ये नाचना बंद कीजिए। हाँ तो पार्वती देवी जाती देखती कि कभी मैंने देखा नहीं अपने पति को इतना उत्साहित आनंदित नाचते हुए गाते हुए, आज क्या हो गया। तो इन्होंने कहा अभी अभी मुझे नारद के द्वारा कृष्ण प्रसाद मिला है, नारायण का उच्चिष्ट मुझे प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा आप तो मुझे अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धांगिनी का मतलब है हर चीज को आपको क्या करना होगा बांटना होगा, तो आपने मुझे नहीं दिया महाप्रसाद। तो शिव जी को छोड़कर पार्वती निकलती है और तपस्या करती है भगवान कृष्ण के लिए, और क्या उद्देश्य क्या था उसका, केवल महाप्रसाद कृष्ण प्रसाद प्राप्त करना। तो पार्वती तपस्या करती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। पार्वती कहती मुझे ही नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सारे विश्व को कृष्ण प्रसाद, आपका जो प्रसाद है वो प्राप्त हो जाना चाहिए। तो फिर हाँ भगवान, वो भी एक रीजन है, जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं जगन्नाथपुरी धाम में, और नित्य रूप से वो कृष्ण प्रसाद सारे जीवों को प्रदान करते हैं। इसलिए जगन्नाथ को भोगा अर्पित करने के बाद वहाँ जो विमला देवी हैं उनके बाद वो भोगा उनको ऑफर किया जाता है और पूरे लोगों को बाद में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उनमें हमें फेथ की आवश्यकता है। स्वल्प पुण्य वताम राजन विश्वासो नैव जायते, सो अल्प पुण्य, जिन लोगों का अल्प पुण्य है उन लोग कभी भी इन चीजों में विश्वास नहीं करते। महाप्रसाद गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे नाम, भगवान का नाम ब्रह्म, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव, भक्तों में भगवान के नाम में, महाप्रसाद में और गोविंद में, इन चार चीजों में जो अल्प पुण्य रखने वाले लोगों का कभी भी विश्वास नहीं होता। तो इसलिए प्रसाद में, क्योंकि हमारा प्रसाद हम पाते हैं केवल अपने जीवा की तुष्टि के लिए, जो मुझे अच्छा लगता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब प्रसाद पाते थे तो उनका उचिष्ट लेने के लिए उनके रूम के बाहर उनके शिष्य इकट्ठा हो जाते थे, और जब उनके उनका जो प्लेट था प्रसाद प्लेट से बहुत सारा उचिष्ट वो रखते थे या छोड़ते थे, तो उनके शिष्य वही चीजें लेते थे जिसमें रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, या कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेते थे, बाकी चीजों को छोड़ देते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पूछते थे कि आज किसने क्या क्या खाया है। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज के जो सेक्रेटरी थे, जो डिवोटी सेवक थे, वो कहते थे कि गुरुदेव आपके जो उच्चिष्ट हैं गुलाब जामुन या अलग अलग स्वीट्स है उनको तो आपके शिष्यों ने खा दिया है लेकिन बाकी चीजों को नहीं खा रहे हैं। तो एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया, जो ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक को क्या कहते हैं जो सांबर में डाला जाता है, सहजन, सहजन को उन्होंने कहा ये सब्जी बनाओ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको खाया और चबा चबा के वो छोड़ दिया, और वो छोड़ा तो फिर देखा गया बाद में कि कोई भी डिसाइपल उसको ले नहीं रहा है, उस उच्चिष्ट को वैसे ही छोड़ दिया। तो मतलब हम महाप्रसाद से विश्वास या फेथ के साथ स्वीकार नहीं करते, हमें हमारे जीवा के लिए जो अच्छा लगता है उसी को हम वास्तव में स्वीकार करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के लिए या भगवान के लिए जो कुकिंग होती है वो वास्तव में केवल श्रीमती राधिका या लक्ष्मी का अधिकार है, उसके अलावा कोई भी भगवान के लिए क्या नहीं करता, कुकिंग नहीं कर सकता। जगन्नाथपुरी में वो लीला आती है कि किस प्रकार से एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ और बलराम मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए थे बाहर टेंपल से बाहर। तो उस समय क्योंकि ओडिशा में जो स्त्रियां हैं वो हर थर्सडे लक्ष्मी की पूजा करती हैं, अलग अलग नियमों का पालन करती है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, और हर थर्सडे लक्ष्मी की पूजा करती है ताकि लक्ष्मी की कृपा हो जाए मार्गशीर्ष महीने में, सारी जो ओडिशा की स्त्रियां हैं। और उस दिन क्योंकि लक्ष्मी ओनर हैं, जगन्नाथ मंदिर की स्वामिनी कौन है, लक्ष्मी जी हैं, तो फिर लक्ष्मी जी ने परमिशन पहले से लेके रखा था जगन्नाथ जी से कि थर्सडे जब आएगा मार्गशीर्ष का मैं बाहर चली जाऊंगी, मेरे जो भक्त हैं उनके ऊपर कृपा का वर्षाव करने के लिए सैंक्शन कर लिया था जगन्नाथ ने कि कहा आप जा सकती हो। तो फिर लेकिन जब एक दिन लक्ष्मी जब गई बाहर तो एक 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 मर्चेंट फैमिली था, व्यापारी फैमिली था, सुबह सुबह लक्ष्मी गई एक ओल्ड बूढ़ी स्त्री के रूप में, देखा कि उस घर की सारी स्त्रियां सो रही हैं, 10 बज रहे हैं तब तक सो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, तो लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहां गई एक सीनियर ओल्ड लेडी थी उस घर के, उनको कहा कि आपको मेरी पूजा करनी चाहिए, इन नियमों का पालन आदि करना चाहिए। उस लेडी ने भी भगा दिया वहां से लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी जी ने अपने सारे ऐश्वर्य को निकाल लिया उस घर से, सारे लोग भीख मांगने लगे, वो वहां से आगे चले गए, एक चांडाल फैमिली था जहाँ चांडाल लोग रहते हैं, उसमें से एक बहुत अच्छी स्त्री थी जो लक्ष्मी की सेवा आदि कर रही थी, भगवान जगन्नाथ का स्मरण करती थी नित्य रूप से। उनके घर से विजिट करके लक्ष्मी अपनी कृपा प्रदान करके वापस मंदिर में घुस रही थी, और ये दोनों भी टेम्पल में घुस रहे थे मॉर्निंग वॉक से, कृष्ण और बलराम। तो ये जा रहे थे तो बलराम ने देखा कि देखो, कृष्ण को कहा कि ये तुम्हारी पत्नी अभी भी अंदर जा रही है और ये उस चांडालिनी जो स्त्री है जिसका नाम था श्रिया चांडालिनी, उनके घर से ही आई है और चांडाल लोग अशुद्ध होते हैं और ये पूरा मंदिर अभी क्या करेगी अंदर जाकर अशुद्ध करेगी। तो बलराम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बलराम ने कहा देखो ये उचित नहीं है, कभी भी बाहर चली जाती है, किसके भी घर में जाती है, कहाँ भी खाती है, सारा अशुद्ध हो जाएगा, आप इसको रोको। अभी तो ये बहुत गुस्सा हो रहे थे, कृष्ण को कहा, जगन्नाथ जी को कहा, फाइनल डिसीजन ले लो, या तो उसको रखो मंदिर में, या तो मुझे रखो, या तो मैं चला जाऊंगा बाहर, बाहर रहने लगूंगा, बलराम ने कहा। तो जगन्नाथ जी को सोचने लगे, वो विपदा में थे क्या करे। तो उन्होंने कहा कि तुम रह जाओ, मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ, उसको बाहर जाने के लिए बोलता हूँ। कितना कठिन है पत्नी को बाहर निकालना, अपने भाई को रखना। हाँ, तो फिर उन्होंने बुलाया कि आप कहाँ चले गए थे, आपका परमिशन लेकर तो मैं गई थी बाहर, हर थर्सडे में जाती हूँ मार्गशीर्ष में। तो उन्होंने कहा बलराम कंप्लेन कर रहे हैं और आप अभी के अभी अपना लगेज पैक करो और टेम्पल से बाहर चले जाओ। तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया, लक्ष्मी जी ने कहा जब हमारी शादी हुई थी, समुद्र मंथन से निकली है लक्ष्मी, आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि 10 अपराध मैं करूंगी तब तक आप क्षमा करोगे, लेकिन अभी ये पहला भी अपराध नहीं है। तो जगन्नाथ जी कुछ भी नहीं सुन रहे थे, वैसे उनके पास कान भी नहीं है। जगन्नाथ जी की विशेषता है, कान नहीं फिर भी सुनते, हाथ नहीं फिर भी एक्टिव है, पांव नहीं है फिर भी चलते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी ने जब कहा, इनको बहुत गुस्सा आया और निकल पड़ी, और केवल अकेले ही नहीं निकली, उनका सारा स्टाफ था, सेवा करने वाला स्टाफ किसका है, लक्ष्मी जी का है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है कृष्ण बलराम को, इनको तो एक ही पता है भोग आगे आ जाए उसको ग्रहण करें, बाकी चीजें पता नहीं है, बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं, कैसे हो रही है वो उनको पता नहीं है। तो लक्ष्मी जी निकल जाती है उस रात को और पूरा अपने स्टाफ को लेके चली जाती है किचन से। फिर यहाँ कृष्ण बलराम थे, सुबह उठे, आराम से उठे, भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं, भगवान उठते हैं और फिर देखा बलराम ने कहा अरे सूर्य उदय हुआ, बहुत लेट हो रहा है, अभी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं आया, पहला भोगा कहाँ है, 8-8 समय में भोगा लगता है, पहला भोग कहाँ है। तो जगन्नाथ जी ने कहा मैं चेक करता हूँ आज क्यों डिले हो गया है भोगा ऑफरिंग। तो जगन्नाथ जी थोड़ा सा बाहर गए रूम से अपने, तो देखा कि कोई नजर, निर्जन स्थान हो गया है जगन्नाथ टेम्पल। उन्होंने कहा लक्ष्मी टेम्पल को छोड़कर चली गई है, वो अकेले ही नहीं गई, अपने पूरे स्टाफ को लेके चली गई है। फिर देखा कि अभी कैसे हम खाएंगे, तो इनको भूख बढ़ रही थी बलराम की, जगन्नाथ जी की भी। बलराम ने कहा चलो किचन में चलते, किचन में गए दोनों, किचन में देखा कि उनका जो स्टाफ जाते समय वो नॉर्मल सिचुएशन से नहीं गुजरा था, उन्होंने जितने चूल्हे थे वो तोड़ के चले गए थे, जितने बर्तन थे वो साथ में ले गए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा था वहां। और फिर उन्होंने सोचा कि स्टोर में जाते हैं, हाँ तो वहां गए तो स्टोर में, क्योंकि लक्ष्मी चले गई तो सारी चीजों को अपने साथ ले गए, स्टोर बिल्कुल खाली हो गया था। और फिर बलराम और जय दोनों बहुत भूख से पीड़ित हो गए और उन्होंने सोचा क्या करे, तो इन दोनों ने सोचा अभी टेम्पल के बाहर ही चलते हैं, अभी अंदर तो हमारा भोजन है ही नहीं, हमारे लिए भोगा नहीं है, बाहर ही हम निकलते हैं। तो फिर कृष्ण बलराम दो ब्राह्मणों का वेश धारण करके वो बाहर निकले, और बाहर निकलते ही कई लोगों के पास वो जाते थे और मांगते थे कि कुछ दे दो हमें खाने के लिए, लोग धुतकारते थे, अपने दरवाजे में खड़े नहीं करते थे। तो जगन्नाथ बलराम उनको इधर उधर भागना पड़ रहा था। फिर जाते जाते उन्होंने सोचा अभी कुछ खाने को हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कम से कम क्या करें, कुछ पी लेते हैं, पानी तो पी लेते हैं। तो दूर से उनको एक तालाब नजर आया, बलराम ने कहा चलो थोड़ा सा पानी पी लेते, क्योंकि जब ये बाहर निकले तो लक्ष्मी जी ने सूर्य को ऑर्डर दिया था कि आप अपनी गर्मी बढ़ा दो, इनको जरा ताप प्राप्त होने दो। तो सूर्य का गर्मी इतना बड़ा, इतनी प्यास इनको लगी कि उस समय जैसे ये उस पॉन्ड के पास गए, सरोवर के पास गए, उसी क्षण वो सरोवर सूख जाता है, ये दोनों बिविल्डर हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। फिर वहां से इन्होंने सोचा पानी नहीं तो किसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं, जो नए नए पत्ते आए हैं। तो वो देखते हैं कि पत्ते हम खा लेते हैं, तो उस वृक्ष के पास गए तो वहां पत्ते भी सूख गए। फिर वहां से वो चलते चलते एक दूसरा मंदिर दिखाई दिया जहां लंगर चल रहा था, भंडारा हो रहा था। तो अभी इनका एंट्री नहीं हो रहा था, बहुत लंबा लाइन था। इन्होंने सोचा हम पहुंचते पहुंचते तो प्रसादम खत्म हो जाएगा वहां। तो जगन्नाथ ने क्या सोचा कि वहां से एक लेडी आ रही थी, एक स्त्री आ रही थी, जिसके हाथ में पप राइस था, मुड़ी था, मुड़ी मुड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो उन्होंने बलराम ने कहा, ओ माता जी आप थोड़ा सा ये मुड़ी प्रसाद हमें दे दो। तो माता जी दे ही रही थी मुड़ी प्रसाद, तो लक्ष्मी जी ने, जो विंड गॉड है, वायु देवता है, उनको कहा कि आप थोड़ा तेज हो जाओ। तो वायु देवता ने हवा को तेज कर लिया, सारे मुड़ी को उड़ा कर ले गए। तो कृष्ण और बलराम पूरे जगन्नाथपुरी में घूम रहे हैं, किस लिए? प्रसाद के लिए। तो उस समय फिर किसी ने कहा कि जो चांडाल लोग जहां रहते हैं ना, वहां एक स्त्री है और वो बहुत सुशील है, उनके वहां वो बहुत उदार हृदय वाली है, उनके घर जाओ और जरूर आपको वहां कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। अभी बलराम ने तो पहले बहुत निंदा की थी कि अशुद्ध हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो जाएंगे, अभी भूख लग गई तो जहां मर्जी मिले प्रसाद वहां से हम शुरू कर देते हैं। तो कृष्ण और बलराम उस चांडाल का जो विलेज था वहां जाते हैं, और वहां जाके उनको कहते हैं कि हमें भोजन चाहिए। बलराम कहता है आपके हाथ से कुक हुआ नहीं खाएंगे, हम खुद कुकिंग करेंगे। अभी भी इनका घमंड उतर नहीं रहा था। तो फिर वो उन लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी, उनके लिए चूल्हा दे दिया, लकड़ दे दिए, मैच बॉक्स दे दिया, इंग्रेडिएंट्स दे दिए। तो ये सब जगन्नाथ जी को कहा बलराम ने, वो सीनियर है, बड़े भाई है, उन्होंने कहा तुम कुकिंग करो, मैं स्नान करके आता हूँ। बलराम जी स्नान करने गए और यहाँ जगन्नाथ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, चूल्हा उनसे जल नहीं रहा था। बलराम जी आ गए, उनको लगा प्रसाद तैयार होगा, आके देखते हैं तो यहाँ ना प्रसाद है ना कुछ, चूल्हा भी जला नहीं। तो बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा तुम साइड में हो जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। तो बलराम जी ने चूल्हा जलाया, जल गया, लेकिन केवल धुआं ही निकल रहा था, ना आग जल रही थी ना कुछ हो रहा था। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ भी हम पका नहीं पा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आप ऐसा करते हैं, इन्होंने जो भोजन बनाया ना उसी को ही ग्रहण करते हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आप बहुत भूखे हैं, सुबह से अभी रात होने जा रही है, और लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी को डांट के गई थी कि आप, मैं यदि निकल जाऊंगे 12 साल भूखे रहोगे, 12 साल के लिए इतना लंबा बोला था। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने जो भी उनके घर में बना था वो सर्व करना शुरू किया। जगन्नाथ और बलदेव खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। जब उनका भोजन पूर्ण हुआ तो फाइनली एक केक उनको सर्व किया गया, एक विशेष प्रकार का केक। और जैसे जगन्नाथ और बलराम के सामने वो केक आया तो जगन्नाथ समझ गए कि ये चीज केवल लक्ष्मी को पता है कि भोजन के बाद हम एक विशिष्ट स्वीट खाते हैं और वो इस प्रकार से बना होता है। तो जरूर ये जो फूड आज हमने खाया है ये किसने बनाया है? लक्ष्मी ने। तो लक्ष्मी जी वहां उस घर में निवास कर रही थी और फिर इनका अहंकार चकनाचूर हो गया। तो बलराम तो सीधा बोल नहीं सकते अपने भाई की पत्नी को, तो बलराम ने जगन्नाथ जी को कहा कि तुम क्या करो, जाओ उसे क्षमा मांगो, उसका हाथ पकड़ के क्या करो लेके आ जाओ और उनको बोलो कि तुम्हें पूरा छूट है, चाहे जब मर्जी आओ टेम्पल में और जब मर्जी बाहर चले जाओ। तो इस प्रकार से जो जगन्नाथ प्रसाद है या कृष्ण प्रसाद है, हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे जो डेटी किचन है या किचन है वो किसका किचन है? राधा रानी का किचन है, उनका स्वामित्व है, उनके अध्यक्षता में वास्तव में कुकिंग होता है, उनके लिए उनके पास ही सामर्थ्य है कृष्ण के लिए भोगा बनाने का, हम सब तो उनको असिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण प्रसाद है ये स्वयं लक्ष्मी बनाती है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसी कारण से जगन्नाथ जी वास्तव में बहुत अधिक दयाशील हैं, बहुत अधिक कृपालु हैं और दो प्रकार से वो अपनी कृपा सदैव सब लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं, एक तो अपने दर्शन के द्वारा और दूसरा उनके प्रसादम के द्वारा। तो जगन्नाथपुरी में और एक डिवोटी का लीला आता है, क्योंकि यह विशेष रूप से जगन्नाथ जी है, तो मैं सोच रहा था जगन्नाथ की कुछ दो तीन पास टाइम चर्चा करो। तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था रघु। तो ये रघु ये ओरिजिनली भगवान राम के भक्त थे। ये जब जगन्नाथपुरी में आए हैं तो वहां जब जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन करने के लिए टेम्पल में प्रवेश किया तो उनको सीता राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। उन्होंने कहा अभी मैं इसके बाद अयोध्या नहीं जाऊंगा, यही मेरे सीताराम लक्ष्मण हैं, मैं इधर ही निवास करूंगा। तो जगन्नाथ मंदिर के सामने ये जो रघु नामक जो डिवोटी है वो वहां निवास करने लगे सिंह द्वार के सामने ही। और उनका जगन्नाथ जी के प्रति इतना अधिक प्रेम था, विशेष रूप से सेवा की भावना थी, मित्र रूप में साक्य भावना में। तो फिर जब एक दिन उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी के लिए बहुत अच्छा गार्लैंड बनाया, माला बनाया, लेकिन उसके लिए माला को बनाने के लिए उन्होंने जो धागा होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, उन्होंने केला का जो बार्क होता है, केले का थ्रेड निकलता है, उस थ्रेड में फूलों की एक सुंदर सी माला बनाई और वो गए बहुत उत्साह से भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए। तो जो पुजारी थे उन्होंने कहा ये चीज ऑफर नहीं हो सकती, ये अनऑफरेबल है, ये अर्पित नहीं की जा सकती, इसको आप ले जाओ। उनको बाहर निकाला गया और उनकी माला को स्वीकारा नहीं पुजारियों ने। तो ये जो रघु है वो आए और जगन्नाथ के जो सिंह द्वार उस गेट में दिन रात रोने लगे जगन्नाथ के स्मरण में। और जब जगन्नाथ रात को सोने वाले थे तो उनको एक विशेष ड्रेस पहनाया जाता है, विशेष वेश है, बड़ा श्रृंगार वेश, वृंदावन का वेश पहनाते भगवान को शाम को, बड़ा श्रृंगार वेश जिसमें केवल फ्लावर्स और गार्लैंड्स आदि यूज किए जाते हैं। तो जब हेड पुजारी भगवान को भगवान का श्रृंगार कर रहे थे तो उस समय वो पूरा प्रयास कर रहा था माला पहनाने का, पगड़ी में फ्लावर लगाने का, लेकिन एक भी फूल या एक भी माला जगन्नाथ जी के शरीर में रहती नहीं थी, हर चीज गिरने लगी। पूरी रात हो गई फिर भी पुजारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जगन्नाथ जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पुजारियों ने हड़ताल कर दिया, सारे पुजारी इकट्ठा हो गए उस रात, मंदिर में सोए, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। फिर जगन्नाथ, उनको लगा कि हमने जगन्नाथ जी के प्रति कुछ अपराध हमने किया है। तो भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आके उस हेड पुजारी को कहते कि एक ही आप लोगों ने अपराध किया है कि मेरा जो भक्त है रघु, उसने इतनी सुंदर माला बना के लाए थे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो वो माला का जो थ्रेड है वो वास्तव में उनका डिवोशन है, उनका प्रेम है मेरे प्रति, उसको मैं स्वीकार करने के लिए लालायित हूँ। आप लोग जाओ, वो दिन रात रो रहा है, उसकी माला को लेके आओ और मुझे अर्पित करो। तो ये सारे पुजारी जाते हैं, रघु को ले आते हैं और जगन्नाथ को वो माला ऑफर की जाती है, भगवान जगन्नाथ उसको स्वीकारते हैं। और इस प्रकार से वो जो रघु हैं जगन्नाथपुरी में इतने अधिक फेमस होते हैं। फिर एक दिन ये जो डिवोटी है बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं, और रहते तो मंदिर के सामने ही थे, इतने अधिक बीमार होते हैं कि वो अपने बेड से उठ नहीं पाते, वहां ही मल मूत्र आदि त्याग करना होता था, कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। लेकिन जगन्नाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाते, भगवान जगन्नाथ उस अपने भक्त की सेवा के लिए एक युवक बालक के रूप में जाते हैं और सेवा शुरू करते हैं। फिर ये रघु को, रघु पहचान लेता है, वो कहते कि हे कृष्णा, आप मुझे बहुत अधिक लज्जित कर रहे हैं, आप स्वयं मेरी इतनी गंदी सेवाओं को आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरी सेवा करने में सदैव आनंद अनुभव करते हैं, उससे ही अधिक मैं सदैव किस चीज में आनंद अनुभव करता हूँ, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। इस प्रकार से जो रघु है उनके साथ भगवान जगन्नाथ का विशेष सेवा का आदान प्रदान था। फिर एक रात को वो रघु को कहते हैं, क्योंकि वो मित्र की भावना में थे, तो जगन्नाथ कहते कि हे रघु, आज मुझे जो जैक फ्रूट है, कटहल, कटहल जो पका हुआ कटहल है, वो खाने की इच्छा हो रही है। और आप चलो मेरे साथ, आज हम रात को जो राजा का गार्डन है उसमें जाएंगे और चुरा कर खाएंगे उस फल को, हाँ कटहल को। रघु ने कहा कि आपको इतना ही कटहल अच्छा लगता है तो कल मैं आपके लिए ऑफरिंग करता हूँ कटहल। भगवान ने कहा जो चुरा कर खाने में जो आनंद है, जब ये लोग मुझे बहुत नाना प्रकार की चीजें ऑफर करते हैं उसमें इतना आनंद नहीं आता जितना कैसे आनंद आता है चुरा कर खाने में। इसलिए वो कहते कि मेरी माता यशोदा नंद महाराज आदि मेरे लिए इतना मक्खन दूध दही आदि बनाते थे वृंदावन में, लेकिन रेयरली मैं खाता था, अधिक से अधिक मैं क्या करता था चुराने जाता था और खाता था वहां ब्रज गोपियों के द्वारा। तो फिर इन्होंने रघु को ले लिया भगवान जगन्नाथ ने शाम के समय में रात को, और राजा जो गजपति है उनके कटहल के गार्डन में पहुंच गए ये दोनों। और जगन्नाथ ने कहा देखो मुझे तो चढ़ना नहीं आएगा पेड़ के ऊपर, आप तो देखते हो ना हाथ है ना पांव है, कैसे चढ़ो, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, चढ़ो कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ो और जाकर जो सबसे बड़ा कटहल है जो बहुत अच्छा पका हुआ है उस कटहल को तोड़ो और नीचे दे दो, मैं कैच करने के लिए नीचे हूं। अब ये बहुत उत्साह से गए ऊपर, रघु जैसे ऊपर पहुंचे देखा कई प्रकार के कटहल है, जो सबसे बड़ा था उसको उन्होंने चूज किया और तोड़ा। तोड़कर उन्होंने कहा कि ओ जगन्नाथ मैं अभी ऊपर से छोड़ रहा हूँ, आप कैच करो इसको। तो जगन्नाथ जी ने कहा मैं कैच कर रहा हूँ, नीचे हूँ, आप छोड़ दो। अभी इन्होंने इतना बड़ा कटहल पका हुआ छोड़ दिया और जगन्नाथ जी ने कैच नहीं किया, जगन्नाथ जी भाग गए वहां से। हाँ, और जैसे छोड़ा तो इतना जोर से आवाज हो जाता है, सारा कटहल फूट फूट के इधर उधर बिखर जाता है। हाँ, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो आके पहुंच जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रघु सब जगह फेमस थे कि ये बहुत शुद्ध भक्त है, महान भक्त है, पूरा जगन्नाथपुरी उनको प्रणाम करता था, आदर देता था। आज ये चकित हो गए कि ये शुद्ध भक्त को क्या हो गया, रात को चोरी करने के लिए गार्डन में आया है। तो ये सारे सिक्योरिटी गार्ड अचंभित हो गए और ये रघु ऊपर से उतर ही नहीं रहा था, सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहे थे। फिर राजा को लाना पड़ा, जब राजा को लाया गजपति को तो राजा आकर कहता है ओ रघु आप नीचे आ जाओ, आपको यदि चुराना ही था आप मुझे बोल देते, मैं आपके घर एक कटहल नहीं कई सारे कटहल भेज देता पूरे महीने के लिए। उन्होंने रघु ने कहा ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती किनकी है, जगन्नाथ जी की है, ये वास्तव में कटहल खाना चाहते हैं जिन्होंने मुझे लाया और क्या कर दिया, फंसा दिया। तो इस प्रकार से विशेष आदान प्रदान जो भगवान जगन्नाथ है वो अपने भक्तों से करते हैं, और जगन्नाथ जी सदैव तैयार रहते हैं भगवत या भक्तों की सेवा में। अंग्रेजों के समय में एक डिवोटी बता रहा था, ये रिकॉर्डेड लेख था, ये रघु उस समय था जब अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय जब रथ यात्रा होने वाली थी तो पूरा रथ के ऊपर जगन्नाथ जी आ गए, बैठ गए, राजा आ गया, उन्होंने जो ट्रेडिशनली जो झाड़ू लगाना है वो सब चीजें हो गई, अभी रथ शुरू ही होने वाला है। तो रथ अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था, ब्रिटिश जो एक मेन जो शासक था या मेन जो लीडर था गवर्नर, उन्होंने बड़े हाथी लगाए रथ को खींचने के लिए, लेकिन फिर भी एक इंच भी रथ आगे नहीं जा रहा था, सब परेशान थे। तो उस समय उस जो ब्रिटिशर व्यक्ति था उन्होंने ये रघु को बोला, ये रघु देखो ये रथ ये जा ही नहीं रहे आगे, क्यों हिल नहीं रहे, आपके भगवान जा ही नहीं रहे आगे। तो रघु कहते हैं अभी मैं आता हूं। ये रघु गया रथ के ऊपर चढ़ा और जाके जगन्नाथ जी के कान में कुछ बोला उन्होंने, नीचे उतरा तो रथ क्या होने लगा, चलने लगा। वो ब्रिटिश व्यक्ति कहता है रघु तुम भी परफेक्ट हो और तुम्हारे जो मालिक है वो भी परफेक्ट है। इस प्रकार से वास्तव में जगन्नाथ जी विशेष विग्रह है कलियुगा के, जो अपने भक्तों से विशेष स्नेह करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी की कृपा की हमें याचना करनी चाहिए और अधिक से अधिक जो जगन्नाथ जी हैं उनका गुणगान करना चाहिए। जगन्नाथ जी वास्तव में कौन है, द्वारका की कृष्ण है, जो द्वारका में निवास करते हुए हैं, वृंदावन वासियों के विरह में उनको ये प्राप्त हुआ है, ये जो रूप है। हाँ, और ये रूप कैसे प्राप्त हुआ है, श्रवण करने मात्र से, मतलब श्रवण इतना पावरफुल है कि वो आपको नया रूप दे सकता है, दिव्य रूप दे सकता है। तो केवल कृष्ण कथा को हम सुनते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए व्यक्ति को इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा श्रद्धया शुण्वता श्रद्धया नित्यम, कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ नित्य रूप से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं उतना ही अधिक हमारा आसक्ति स्नेह या प्रेम भगवान से होने लगता है। जो आप सुनोगे वैसा आप बनोगे, शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए सुनना एक महत्वपूर्ण अंग है। कृष्ण कथा, कृष्ण की चर्चा इतनी मधुर है कि कृष्ण स्वयं उसको सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए लालायित रहते हैं। वृंदावन में एक लीला आता है कि जब कृष्ण बहुत अधिक छोटे से बालक थे तो उस समय माँ मदर यशोदा उनको रात को सुला रही थी लोरी गाते हुए। तो मदर यशोदा कोई लोरी नहीं गा रही थी, मदर यशोदा क्या कह रही थी, उनको कृष्ण कथा सुना रही थी। कृष्ण लेटे हुए थे अपने बेड पर, रजाई ओढ़ी हुई थी उन्होंने आधी, और मदर यशोदा उनको कह रही थी कि एक समय था जहां एक राजा थे जिनका नाम दशरथ था, उनके कई पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र कौन था, राम। राम लक्ष्मण और सीता एक बार वनवास के लिए जाते हैं और अचानक सीता का अपहरण हो जाता है। तो जैसे अभी अटेंटिव हियरिंग इसको देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण बेड में लेटे हुए हैं, लेटे लेटे इतना सावधानी से सुन रहे हैं, वो सुन रहे थे मदर यशोदा की इस चर्चा को। तो जैसे उन्होंने सुना कि सीता देवी का अपहरण हुआ है, उसी समय कृष्ण लेटे हुए अपने हृदय के अंदर तुरंत अचानक खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर, मतलब हे सुमित्रा नंदन मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। अभी कौन से मूड में आ रहे थे वो, भगवान राम के, मतलब इसमें देख सकते कि मर्ज हो गए कृष्ण कथा में। तो भगवत कथा या भगवत चर्चा इतनी शक्तिशाली है कि कृष्ण भी अपने आप को रोक नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा भगवान सारे भक्त कुछ ना कुछ कुरियर करना चाहते हैं आपको, ना कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, आपका एड्रेस बताओ, प्रॉपर एड्रेस क्या है। भगवान ने कहा नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, फिर रहते कहाँ हो, जहाँ सदैव मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं उस स्थान में मैं निवास करता हूँ। इसलिए कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि भक्तों का ये प्राण है, मच्छिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों का लाइफ है कृष्ण, कृष्ण कथा। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कृष्ण कथा इज लाइफ, कि कृष्ण कथा ही हमारा जीवन है, और जो भक्त है कृष्ण कथा में ही सर्वोच्च आनंद अनुभव करते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन को इस प्रकार से डालना चाहिए कि हम सदैव भगवान के संपर्क में बने रहें। और कौन सी चीज से हम भगवान के संपर्क में रह सकते हैं, नाम रूप गुण और भगवान की लीला और उनका धाम। इन पांच चीजों के हम संपर्क में यदि हमेशा बने रहते हैं तो हम कृष्ण के बहुत अधिक नजदीक हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ की कृपा को हम अनुकूल कर सकते हैं, उनकी सेवा करके, उनके नामों का गुणों का लीलाओं का वर्णन करके, श्रवण करके, और उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद है उसको स्वीकार करके। हरे कृष्णा, एक बार हम सब एक साथ चांट करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।